शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाबा सबको क्या कहते हैं, मेरे सिक्की लदे बच्चे। बाबा के पास जब आते थे बाबा कहते थे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे नैनों के नूर, मेरे सिक्की लदे बच्चे। तो बाबा बहुत प्यार से कहते थे, दोनों बाहें पसार के खड़े होते थे, आओ मेरे सिक्की लदे बच्चे। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं बताइए, भट्टी के भाई और माताएं बताओ क्या कहते हैं बाबा को, मीठे बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, यही बोलते हो क्या? बोलते हो, बोलो मेरा बाबा, जोर से बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे भी कहते सिक्की लदा बाबा, कहेंगे सिक्की लदा बाबा, ये कम ही कहते हैं। सिक्की लदे उसको कहते हैं जो अपने से छोटा होता है, छोटे बच्चे होते ना, कहते बहुत प्यारा है। लेकिन बाबा को कभी बच्चा बना लेते हैं, बाबा को कभी और कुछ अपना बना लेते हैं, तो इसलिए बाबा कहते बच्चे भी कहते हैं हमारा सिक्की लदा बाबा। दूसरी बात बाबा ने कही कि आप चैतन्य लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताना है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि तुम बच्चों को पासपोर्ट लेना है। आप जैसे आप देखते हैं कोई लौकिक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो एक स्थान ट्रेन में बुकिंग करेगा, फ्लाइट में बुकिंग करेगा, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए उसको पासपोर्ट चाहिए। बिना पासपोर्ट, फिर वीजा के बिना वो जा नहीं सकता है। अब हमको नरक से स्वर्ग मीन्स दूसरी दुनिया में जाना है, तो पासपोर्ट लिया है? जिन्होंने पासपोर्ट लिया वो हाथ खड़ा करो, है? जिन्होंने लिया वो हाथ खड़ा करो। लेकिन पासपोर्ट गुम ना हो जाए, उसको कायम रखने के लिए क्या है बाबा ने बताया है कि बाबा को याद करो। और जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो कर्मातीत ही अवस्था ही नई दुनिया में जाने का पासपोर्ट है। क्यों? क्योंकि जब तक संपन्न नहीं बने हैं, पवित्र नहीं बने हैं, तब तक नई दुनिया में जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपने पासपोर्ट को कंटिन्यू करना है। कभी कभी पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता ना, तो उसको रिन्यू करने के लिए जाते, तो बाबा कहते उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करना है? बाप की याद से अपने स्टेज को कर्मातीत बनाना है। अभी हम सुनते हैं आज प्यारे बाबा की महावाक्य। आज की तारीख है 11 जून 2025। मुरली का हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें अभी बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। मीठे बच्चे अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। आज का प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता? बाप से वर्षा लेने का पहले का पुरुषार्थ और जब वर्षा मिल जाता है तो उसके बाद की स्थिति में अंतर क्या होता है? इसका उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब बाप से वर्षा मिल जाता है तो क्या होता है? जो बाबा देते हैं, वर्षा देने वाला है, इतना ऊंच बनाता है, तो क्या हो जाता है? उस बाप को ही भूल जाते। कितनी बड़ी वंडरफुल बात है, वर्षा लिया, जैसे दुनिया में होता है ना, कोई किसकी बहुत मदद करता है और सब कुछ मिलने के बाद उसको बिल्कुल भूल जाता है, तो दुनिया में उसको क्या कहते, स्वार्थी है। लेकिन बाबा नहीं कहते, लेकिन ड्रामा में ऐसा पार्ट है। तो बाबा कहते हैं, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो, देह के सब संबंध को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ये भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। भूलने में बाबा कभी कहते नुकसान, लेकिन आज बाबा ने कहा मुसीबत। नुकसान में और अंतर होता है, मुसीबत में तो होता है इतना फंस जाते हैं, निकलना मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी, सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। आज के गीत है, ये वक्त जा रहा है, जो भी करना है अब कर लो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो हम आत्मा है, वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो क्या संकल्प चलता है बताओ? जब आप भट्टी के लिए आने लगे तो मधुबन जाना है तो क्या संकल्प चला बताओ? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, हैं? बताओ क्या है? बोलो। एक तो अपने घर जाते हैं, दूसरा व्यादी नहीं है तो कैसे बताएंगे, है ना? ऐसा है ना, भूल गए ना, कैसे आए यहाँ, आए सब कुछ भूल गए। तो बाबा कहते हैं, जब तुम वहां से मधुबन आते हो तो पहले पहले जरूर अपने को आत्मा समझो। हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अपने बाप के पास। अभी क्या कहेंगे, कहाँ जाते हैं? अपने बाप के पास, अपने घर में जाते हैं, अपने प्यारे बाबा से मिलने जाते हैं ना। तो हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजा पिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाबा हो गया, फिर किससे मिलते हो बताओ? कौन बताएगा किससे मिलने आते हो? बाप दादा, शिव बाबा बाबा और ब्रह्मा बाबा दादा। तो बाबा कहते शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा। शुरू में बाबा के पास यहाँ चिट्ठी आती थी ना, चिट्ठी के ऊपर बाबा के पास पत्र आते थे, उसके ऊपर बाप दादा केयर ऑफ शिव बाप शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, फिर कभी कभी केवल बाप दादा लिखा होता था और माउंट आबू, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता था। पोस्ट ऑफिस वाले अच्छी तरह समझते थे कि बाप दादा लिखना या शिव बाबा लिखना या कुछ भी लिखना, तो वो बिना एड्रेस के यहाँ पर ही चिट्ठी पहुंचा देते थे, क्योंकि उनको पता था ये लोग शिव बाबा को याद करते हैं, बाप दादा को याद करते हैं। तो पोस्ट वाला भी वो जितनी भी ऐसी चिट्ठी होती थी वो सब के सब यहाँ दे जाता था। तो बाबा कहते हैं, तुम जब घर से निकलते हो तो समझते हो कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा दादा। शुरू की चिट्ठियां देखेंगे ऊपर लिखा होगा बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा कलप कलप हम आपसे मिलते हैं, बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाकर। ऐसे वर्षा नहीं मिलता, बेहद का वर्षा कैसे मिलता है? बेहद पवित्र बनाकर। पवित्रता में हद और बेहद में है, तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए, नंबर वार तो होते ही हैं। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना आए। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप की और कोई की याद ना आए। तो बाबा कहते हैं वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। कितनी बातें कही, बाबा बहुत मीठा है, ऊंचे से ऊंचा बाप है और सभी का भगवान है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने ही बाप को पहचाना है। बेहद का बाप सदैव कहाँ आते हैं, भारत में ही आते। शास्त्रों में भी गायन है कि भारत में आते। बाबा कहते मैं केवल भारत में आता हूँ, भारत सारे विश्व को स्वर्ग बनाता हूँ। बेहद का बाप भारत में ही आते, आकर बेहद का संन्यास दिलाते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता। बाबा कहते वो संन्यास नहीं कराते, बाबा वो संन्यास कराते जो बुद्धि का वैराग्य। संन्यास भी मुख्य है जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्ची इनसे बुद्धि का योग हटा दो, इनका नाम ही है नरक दुख धाम। खुद भी कहते हैं कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था ना। अभी तुम समझते हो ये जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। कौन सी बात, कि वो स्वर्गवासी था। बाबा कहते ये भी रॉन्ग है ही नरक, तो स्वर्गवासी कहाँ से हुआ। अभी तुम जो कहते हो वह भी रॉन्ग है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप राइट बात बताते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनने के लिए। पुरुषार्थ करते एक जन्म, प्राप्ति है 21 जन्म। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला है बाप, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर के कहते हैं बच्चे पहले हम तुमको शांति धाम ले जाएं। बाबा क्लियर करके बता रहे, जैसे कोई जाते ना घुमाने के लिए, कहाँ ले जाएंगे, पहले इस टूरिस्ट प्लेस पर ले जाएंगे, फिर इस पर ले जाएंगे, फिर बाद में वहाँ ले जाएंगे। तो हमारा पहला टूरिस्ट प्लेस कौन सा है, टूरिस्ट प्लेस कहो या घर कहो, शांति धाम। तो बाबा कहते हैं बच्ची हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा, मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो फिर बाबा देखे दूसरों को क्या फायदा होता है। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले भी शांति धाम जाए। हमारे कहते तो तेरे भाने सर्व का कल है भला, तेरे भाने सर्व का भला। तो बाबा कहते तुम जाते तो तुम्हारे साथ दूसरे धर्म वाले भी शांति धाम जाएंगे। हम जाएंगे शांति धाम तो पहले आकर फिर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, बताओ। वर्षा मिल जाएगा भाई बताओ फिर क्या होगा, बाबा को ही भूल जाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि बाबा ने वर्षा दिया, इतना ऊंच बनाया, वर्षा मिल गया फिर बाबा को भूल जाएंगे। तुम जानते हो वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप सन्मुख कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं सब भूलते जाओ। अभी कोई से भी नया संबंध नहीं रखना। क्या होता है कभी कभी बाबा के बच्चे इतने भोले बन जाते हैं, देह के सब संबंध छोड़े फिर पता नहीं किस किस से संबंध जोड़ लेते हैं, किसको कुछ बना ले, सारा टाइम एनर्जी और जो नए संबंध बनाते उसमें जाता है। बाबा भूल जाता है, कहते नहीं उसका कल्याण करना है। कल्याण तो नाम मात्र होता है, लेकिन उसमें फंस जाते हैं ना। तो बाबा कहते भी कोई से भी नया संबंध नहीं बनाओ, अभी कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई से संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुई तो वह भी तो मुसीबत हुई, बच्ची आई बच्चा आया, उसको पालना उसको संभालना कितना टाइम एनर्जी जाता है, वह भी मुसीबत हुई। एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहती है सबको भूल, एक बाप को याद करना है, वही हमारा मात पिता टीचर गुरु सब कुछ है। वही हमारा मात पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे तो बाबा याद दिला रहे हैं, पक्का करा रहे हैं, और नए नए संबंध जो है हमको ना जोड़ने हैं, जो पुराने हैं उनको भी तो हमें तोड़ना है ना। तो बाबा कहते हैं एक बाप के बच्चे हम आपस में भाई बहन हैं, चाचा मामा आदि कोई भी संबंध नहीं। ये एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध रहता है। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी हैं, तो कौन हो गए? शिव बाबा के बच्चे ब्रह्मा के बच्चे तो क्या हुए? भाई बहन। शिव बाबा के बच्चे हुए तो क्या हो गए? पोत्रे और पोतियां भी हैं। ये तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। तो बाबा कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्र धारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय, अभी बाबा टाइटल दे रहे, इस समय तुम बच्चे चैतन्य लाइट हाउस हो। आज का टाइटल, इस समय तुम बच्चे चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी आंख, एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। वो लाइट हाउस तो एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, उधर से चारों तरफ लाइट फैलाता है। बाबा कहते तुम लाइट हाउस कैसे हो? घूमते फिरते चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस हो। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो ये दुख धाम है। अभी हम संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, एक ही परिवार, एक बच्चा कलयुगी है और एक बच्चा संगम युगी है। माँ कलयुगी है तो बाप संगम युगी है, माँ संगम युगी है तो बाप कलयुगी है। इसलिए बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये दुख धाम है, तुम जानते हो ये दुख धाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते, केवल यही संगम युग है। बाबा बच्चों से मिलते हैं, बाबा बच्चों से बात करते हैं। साकार में बाबा बच्चों से खेलते थे, रूहान करते थे। बाबा हमेशा कहते मैं बाहर वाले किसी से नहीं मिलता हूँ। बाहर वाला भी कोई आता ना तो बाबा कहते उनको पहचान ही नहीं है कि हम किससे मिलने जा रहे, तो बाबा कभी नहीं मिलते थे। तो इसलिए बाबा कहते बाप बच्चों के साथ बैठते हैं, उनसे ही मिलते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ पढ़ाते हैं, बात करते हैं। बच्चे भी यहाँ आते हैं, कोई कोई लिखते हैं बाबा फुलाने को ले आए। कभी कभी बाबा को पत्र लिखते थे, पूरा ज्ञान नहीं है ऐसा है, पर उसकी रग को दिख करके लिखते थे, तो बाबा भी उसकी रग को समझ आते थे, आएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो बाबा क्या करते थे, कईयों को तो छुट्टी दे देते हैं, कईयों को बाबा छुट्टी नहीं देते थे। बाबा को पता था आएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगी। तो बाबा बता रहे हैं तो बाबा कहते हैं कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आए, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए, तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है उसका भी कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब हैं कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं, सचिव में कोई किसको नमन नहीं करते। अब बताओ वह नमन करेंगे कि नहीं करेंगे, कम से कम रिस्पेक्ट तो देंगे ना। लक्ष्मी नारायण के सामने जाएंगे, राजा महाराजा महारानी के सामने जाएंगे, नमन करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कहते नमन करेंगे? जो कहते नमन करेंगे हाथ उठाओ, कोई नहीं। अरे वो भक्ति भाव से नमन नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट तो रहेगी ना, थोड़ा तो अपना सिर झुकाएंगे ना, वो नमन नहीं होगा जो आज करते हैं। तो बाबा कहते वहां पर करेंगे लेकिन रिस्पेक्ट के हिसाब से। तो बाबा कहते हैं सत्यु में कोई किसको नमन नहीं करते हैं, यहाँ की ये सब बातें वहाँ होती नहीं। ये भी बाप समझाते हैं अच्छी रीति बाप की याद में रहे, सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई को भी भक्ति आदि नहीं करते, तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हैं, तुमको तो बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। यहाँ पर तो बाबा के पास सब बच्चे पढ़ाई पढ़ते, कोई भक्ति आदि थोड़ी करते। कई बार बच्चे आते थे, बाबा को कहते थे, बाबा के सामने हाथ जोड़ते थे, पांव पड़ते थे, बाबा कहते थे भगत आ गए। अभी भी ऐसे हैं, कई कई माताएं आ जाती हैं, हाथ खड़ा कर लेती, हाथ पकड़ लेती है, तो भगत बन जाते ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बन के आओ, भगत बन के नहीं आना है ना। कई बार होता है भावना होती आकर के झुकेंगे, हाथ पकड़ेंगे, पांव पड़ेंगे, गले लगेंगे, तो आज बाबा बता रहे हैं कि बच्चे बनना है, भगत नहीं बनना है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तो अच्छी रीति बाप की याद में रहे, सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको तो बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, घर बैठे आप पे ही साक्षात्कार आदि होते रहे। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, ज्ञान में आने से पहले कईयों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। जिनको ज्ञान में आने से पहले ब्रह्मा या श्री कृष्ण या कुछ भी साक्षात्कार लाइट का हुआ वो हाथ खड़ा करे, बहुत है, देखो ना कितना अच्छा। बाबा ने पहले से आपको चुन लिया, साक्षात्कार से आगे बढ़ा दिया, ताली बजाओ इनके लिए, इनको बाबा ने ही अपना बना लिया, ठीक है। बिना पुरुषार्थ बिना मेहनत साक्षात्कार करा के अपना बना लिए, तो कितना बड़ा भाग्य है। तो बाबा कहती हैं तो घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होते रहते, बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा के बने साक्षात्कार हुआ, कोई पुरुषार्थ नहीं किया। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचे ते ऊंचे बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, यज्ञ की स्थापना हुई, कोई भी आया बस बाबा को देखा और ध्यान में चला गया। फिर यज्ञ जब भारत में स्थानांतरित हुआ, शुरू में दादियां भी कहाँ कहाँ गई, जो भी आते थे, माताएं आती थी, भाई आते थे, बस आके बैठे, दादियों को देखा, किसको बाबा दिखाई दिया, किसको श्री कृष्ण दिखाई दिया। तो बाबा कहते हैं शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते, टीचर हो या ना हो, दादी बैठी हो या ना बैठी हो, आपस में बैठते थे, योग करते थे, एक दो को देख रहे हैं, तो फिर क्या होता, फटाफट ध्यान में चले जाते थे। फिर कभी कभी दादियां आती थी, उनको ध्यान से उतारती थी, कभी बाबा कहते थे ध्यान में यदा खेल पाल नहीं करो। तो बाबा कहते हैं तो बाबा आपस में बैठ ध्यान में चले जाते, कोई तुमने भक्ति थोड़ी की थी, दुनिया में तो मानते ना भक्ति करो तो साक्षात्कार होता। तो बाबा कहते तुमने कोई भक्ति थोड़ी की थी, बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? ये तो जैसे कि एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले। शुरू में बैठते थे बस बैठे, चलो चलो अभी वैकुंठ चलते, सब के सब वैकुंठ में चले गए और सब के सब जाकर के राज कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, जब ऐसा दृश्य होता था ना, बाहर वाले समझ ही नहीं पाते थे, वो समझते थे पता नहीं क्या यहाँ जादू चल रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे एक खेल हो गया, चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते ही चले जाते थे, जो कुछ भी पास हुआ वह फिर रिपीट होगा। अब जो रिपीट होगा ऐसा नहीं होगा कि वो तो अनुभव सहित होगा, वो तो समझ सहित होगा। तो इसलिए बाबा कहते जो उस समय तो समझ नहीं थी ना, अभी वो समझ सहित होगा। तो बाबा कहते जो कुछ पास हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे, सच्चू में पहले पहले ये धर्म है जिसमें बहुत सुख है, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, जो सुख नए मकान में होता है वह पुराने में। जो नया मकान बनाते हैं कितना भी को, थोड़े टाइम के बाद अंतर भी आ जाएगा, लेकिन वो तो फिर अंतर हो जाता ना। तो बाबा कहते जो सुख नए मकान में होता है वह पुराने में नहीं, थोड़े समय के बाद वह भबका कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना, कहाँ स्वर्ग कहाँ ये नरक। तुम खुशी में रहते हो ये भी जानते हो, कौन सी बात, तुम खुशी में रहते हो ये भी जानते हो कि बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। तो बाबा कहते हैं तुम खुशी में बता रहे हो, बाप की याद में तो बहुत फर्क है ना, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक। तुम खुशी में रहते हो ये भी जानते हो कि बाप की याद पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो कोशिश करके, कैसे बैठना है बाबा कहते, यहाँ बैठे हो तो कोशिश करके ऐसे बैठना है कि हम आत्मा हैं। बाबा कहती हैं कोशिश करके आत्मा निश्चय करो। बाबा कहती तू बाप की याद रहेगी, देह में आने से सब संबंध याद आएंगे, ये एक ला है। तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा ना कोई, बाबा हम बलिहार जाएंगे, भक्ति में गाए ना मेरा तो एक दूसरा ना कोई, जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। तो बाबा याद दिलाते बलिहार जाओ, अभी कहते कैसे बलिहार जाए, मित्र संबंधी ये है उन सबको याद करना पड़ता है, हम उनके ऊपर कैसे बलिहार जाएंगे। बाबा फिर याद दिलाते कि भक्ति में तुमने क्या कहा था। तो बाबा कहते हैं बाबा को कहा था ना, तुम गाते भी हो मेरा तो एक दूसरा ना कोई, क्या बोलेंगे माताएं बोलो, मेरा तो एक, बोलो ऐसे नहीं मेरा तो एक शिव बाबा, शिव बाबा को नहीं बोलो, बोलो भाई बहने सब बोलो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा है कोई, दूसरा न कोई, ठीक है ना, पक्का करा दिया। तो बाबा कहते हैं तो तुम क्या कहते थे, बाबा हम बलिहार जाएंगे, अब वही समय है एक को ही याद कर, बलिहार में कुछ नहीं करना है। बाबा कहते जो गाया अब वही समय है एक बाप को याद करना है, श्री निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल, बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं श्री निर्वाह कर्म करना है, आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो सिर्फ अपने को आत्मा और बाप को याद करो। क्या बोला बाबा ने, कभी कभी घूमने जाते ना तो वहां पर रास्ते में कई प्रकार के आपस में बातें करते रहते, बाबा हमेशा कहते थे साकार में जब यहाँ आते थे ना बच्चे, तो बाबा कहते थे बच्चे एकांत है एकांत में चले जाओ, साइलेंस में जाओ, आपस में बातचीत नहीं करो। कई कई फिर ऐसे भी निकल आते हैं, ले जाते घुमाने के लिए, वहां पर ज्ञान की पता नहीं कौन कौन सी बातें सुनाते हैं, तो जो बाबा ने सुनाया वो भूल जाता है, दूसरी बातों में लग जाती है। तो इसलिए पक्का करना है साइलेंस में जाएं, कोई भी इधर उधर की बात सुनाए, चाहे ज्ञान के मिक्स बातें सुनाए चाहे इधर की बातें सुनाए, उस बात का भी ध्यान रखना आपको। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा अनुभव होता है, बिल्कुल साइलेंस में जाते ना तो बाबा की याद में बहुत अच्छे अनुभव होते। साइलेंस में जाओ, ग्रुप में जाओ। और दूसरी बात आपको बता दे, कई कई भाई बहने बहुत अच्छे होते हैं, वो सुबह अमृत वेले योग से पहले अकेले घूमने चले जाते। और आपको मालूम है कि माउंट आबू में कौन रहते हैं, माउंट आबू में, क्योंकि जंगल है तो जंगल में कौन रहेंगे, जंगल के लोग रहेंगे ना, कहीं भालू आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाएगा, तो अकेले अंधेरे में जाते ना तो भालू आप ब्राह्मणों को देख करके खुश हो जाएगा, कहेगा इस जैसा तो और कहाँ दुनिया में मिलेगा, उसको तो बहुत खुश हो जाएगा। इसलिए कभी भी अकेले नहीं जाना है, जाओ दो लोग जाओ, तीन लोग जाओ, अंधेरे में नहीं जाओ, क्योंकि वो कुछ करने के लिए नहीं आते, उनको पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए, जैसे मनुष्य को चाहिए उनको भी चाहिए, लेकिन वो आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अकेले नहीं जाना है और अंधेरे में नहीं जाना है, दो लोग हों, भल वॉक करो, और वॉक करते समय इधर उधर की बातें नहीं करने की, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम सुनते हैं, जैसे बाबा बता रहे थे, तुम गाते हो मेरा तो एक दूसरा ना कोई, बाबा हम बलिहार जाएंगे, ये अभी समय है, एक को ही याद करना है, आंखों से भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, फिर सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना है, श्री निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे, आत्मा को अपने माशूक को याद करना है, कोई की किस सखी में प्रीत हो जाती है तो फिर उसकी याद ठहर जाती। सखी मीन्स फ्रेंड, बाबा के टाइम पर आता था ना, तो कोई कोई होते थे आपस में एक दो से बातें करते, एक दो को बहुत से दिल की बातें करते हैं, तो उनसे प्यार हो जाए, प्यार मीन्स बात बातचीत करने का हो जाता है, तो उसको याद किए बिना नहीं रह सकते हैं, कुछ होगा तो उसकी इंतजार करते रहेंगे, वो आए तो उसको मेरे को समाचार सुनाना, वो आए तो मेरे को उसको ये बात सुनानी, तो बुद्धि वहां चली जाती है, बाबा भूल जाता है। तो बाबा बता रहे हैं, कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वह रग टूटने में, रग मीन्स आपसी जो कनेक्शन जुटा है, वह फिर रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है, पूछते हैं बाबा ये क्या। बाबा के टाइम पर तो बच्चे थे तो कुछ भी होता था, बाबा से पूछते थे, सच्चाई से बताते थे, बाबा हमारे को साथ ये हो गया, बाबा ये क्या करे, तो बाबा उनको बताते थे, युक्तियां बताते थे कि कैसे आपको इसको तोड़ना है, लेकिन कई ऐसे होते थे जो नहीं तोड़ पाते थे, फिर बाबा क्या बता रहे हैं, तो फिर ये रग टूटने में बड़ी मुश्किल होती है, पूछते हैं बाबा ये क्या है, अरे तुम नाम रूप में फंसते ही क्यों हो, पहले ही नहीं फंसो, अच्छा फंस गए तो अपने को निकालो, अरे नाम रूप में तुम फंसते ही क्यों हो, एक तो देह अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब सब है, सबको छोड़ करके एक दो में बुद्धि जाती है, तो बाबा कहते फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता है, बाप कहती है इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वह बुद्धि में ना आए, तुम्हारी बुद्धि में रहे, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं कर, बैठे हैं यहाँ बुद्धि इधर घूमती है, तो फिर बाबा को बताना पड़ता है, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हुए शिव बाबा को भी याद नहीं करते, कोई तो यहाँ बैठे भी बाप की याद में रह नहीं सकते हैं, तो अपने को देखना चाहिए कि हम, बाबा बता रहे हैं, कि अपने को देखना चाहिए हम शिव बाबा को कितना याद किया, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाए, रोला में चार्ट ठीक नहीं होगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खाकर चक्कर लगा 10-15 मिनट आकर बाबा की याद में बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं। अब सुनो, आपके लिए बाबा ने कह दिया, भट्टी वाले आते हैं घर में तो रहते, कारोबार करना है, बिजनेस करना है, ये भी करना है, खाना माताओं को खाना बनाना है, पूरा ध्यान रखना हो, यहाँ आते हैं कैसे, बिल्कुल कोई भी कारोबार नहीं, कुछ नहीं, केवल क्लास और बाबा की याद और सदा बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। इसलिए बाबा कहते भोजन करके साइलेंस में बैठो और 10-15 मिनट वॉक करना, वॉक करो फिर बाबा की याद में बैठ जाओ। तो बाबा कहते हैं खाना खाकर चक्कर लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं, फिर भी जो काम का छोड़कर आए हो वह भी कोई कोई की बुद्धि में आता, कुछ छोड़ के आते ना यहाँ आ जाते, फिर याद आ जाता, बाबा को पता है बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हो, श्री कृष्ण का दीदार हुआ तो बहुत खुश हो जाते हैं, किसी को कुछ दीदार हुआ तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे प्राप्ति तो नहीं हुई ना, श्री कृष्ण का दीदार हुआ तो बहुत खुशी हो जाती है, मिलता तो कुछ भी नहीं, बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे, स्वर्ग का पासपोर्ट उन बच्चों को मिलता है। अब बताओ किसके पास पासपोर्ट है, किसके पास नहीं है ना, अभी तो है ही नहीं, हाथ ही नहीं खड़ा किया तो बाबा को बताओ, मेरे को थोड़ी बताना है ना, फिर से बताओ जिसके पास स्वर्ग का पासपोर्ट है बताओ, बाबा देख रहे कहीं उन्हें नहीं अभी पासपोर्ट लिया ही नहीं, अप्लाई ही नहीं किया तो कहाँ मिलेगा, अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद फिर उसके टाइम मिलता है उसको पासपोर्ट बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है, अब बाप कहते हैं तुम मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं, स्वर्ग का पासपोर्ट उनको मिलता है जो याद में रहे अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते रहते हैं, अपने पास ताज व तखत का फोटो अपने पॉकेट में रख दो जो याद रहेगी। शुरू में यज्ञ में जब पुरुषार्थ करते थे तो बाबा ने क्या किया था, सब दादियों का जो भी सब बच्चे थे सबके दो फोटो खिंचवाए थे, एक फोटो था जो तपस्या कर रहे, दूसरा फोटो था भविष्य जो उनका सजा हुआ रूप है, वो फोटो होता था, कहीं उन्हें देखा भी होगा तो वो फोटो बाबा हमेशा कहते थे पॉकेट में रख दो उनको, कि पॉकेट में रहेगा तो याद रहेगा कि मेरे को अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है, फिर तब जाकर के भविष्य में ऐसा ऊंच पद पाऊंगा, अभी क्या करना है हमको अपने बुद्धि रूपी पॉकेट में रखना है। तो बाबा कहते बुद्धि रूपी पॉकेट में याद रहेगा तो पुरुषार्थ भी वैसा चलेगा, अपने ताज व तखत का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम ये बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उनसे भी मोह लग जाए, मोह मीन्स हमें वैसा बनना है, हम ये बन रहे हैं, नरसे नारायण चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा, ये सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ। बाबा ने पुरुषार्थ कराने के लिए बच्चों को भिन्न भिन्न युक्तियां बताई थी, तो बाबा कहते ये सब है पुरुषार्थ की युक्तियां, कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। भक्ति में सुनते आए ना तो सत्यनारायण की कथा क्या वो सुनाते रहेंगे, ये हुआ वो हुआ फिर उसका इतना नुकसान हुआ फिर उसने याद किया, अरे है क्या वो तो पता ही नहीं है, करना क्या वो तो पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कोई से तुम पूछो सत्यनारायण की कथा क्या है, तो बाबा कहते हैं और सुनने से क्या होता है, बाबा हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, कैसे 84 जन्म लिए हैं, वह भी तो हिसाब चाहिए ना, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। 84 जन्म वाले हाथ उठाओ, सब 84 जन्म वाले, 84 जन्म मीन्स श्री कृष्ण की राजधानी में शुरुआत में आना, 83 वाले थोड़ा पीछे, तो सब श्री कृष्ण की राजधानी सत्यों के शुरुआत में आने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही मुख से सिर्फ कह देते हैं, इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल, बाहरी थ्योरेटिकल इस बाहर की बातें बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्या वो तो कुछ नहीं जानते। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल, ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल, अभी जो हो रहा है उसके लिए भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनाते हैं, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो, ये नई बात है ना, बाबा कहते ज्ञान धारण करते हो स्वदर्शन चक्रधारी बनते तब जाते विष्णुपुरी, वो तो बोलते रहते धारण भी नहीं करते ना विष्णुपुरी में आते हैं, ये नई बात है ना। रावण राज्य फिर रावण राज्य झूठखंड फिर सचखंड राम राज्य होगा, चित्रों में बड़ा क्लियर है, अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, साइंस तुम जो भी हैं उनको ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है, जो ये सारे बॉम्ब शादी बनाने वाले चाहते नहीं हैं, फिर भी वो बार बार कहते पता नहीं पड़ता है हमको कौन ये करा रहा है, कौन प्रेरक है जो हमको पीछे फोर्स दे रहा है, हम ना चाहते हुए भी बना देते हैं, उनको पता है इतना बड़ा बनाने से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो बाबा कहते वो क्या कहते हैं, साइंस दान आदि जो भी हैं उनको ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है, जो हम ये सब करते रहते हैं समझते हैं हम भी ये करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश, जब कोई परवश होता है ना कितना भी समझाओ उस समय सुन लेते हैं और बाद में क्या हो तो वही का वही करते हैं, परंतु वह परवश है, डर लगा हुआ है, समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की दरकार भी नहीं रही, अभी तो लड़ाई करते हैं एरोप्लेन जाते हैं क्या क्या जाता, बाबा कहते फिर तो एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी, समझते हैं घर बैठे एक बॉम्ब छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की दरकार नहीं रहेगी, विनाश तो जरूर होना है, नई दुनिया सतयुग था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, आगे चल समझेंगे, तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं, किस बात का विनाश भी होना है और स्वर्ग की स्थापना भी होनी है, तो बाबा कहते इस बात में बच्चों को पाई का भी संशय नहीं है, सबको पक्का है स्वर्ग में तो जाना भी है स्थापना भी होनी है, ये ड्रामा चलता रहता है, कल्प पहले मौफिक, ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, ड्रामा कराएगा, नहीं करोगे तो भी जबरदस्ती कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा, कई बच्चे इतने अच्छे कहते क्यों पुरुषार्थ करें, जो ड्रामा में होगा सो हम कर लेंगे, ड्रामा अनुसार पद मिलेगा, तो ड्रामा भी अच्छा खेल दिखाता है, चलो तुम कहते मिलेगा तो लो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे ये क्या हुआ, तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा, पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा, क्या कहेंगे पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? पुरुषार्थ करेंगे तो फिर प्रारब्ध बड़ी होती है। पुरुषार्थ बड़ा क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगड़ कोई कभी कोई रह ना सके, कितना भी हो, किसके भाग्य में हो कि ये उसको मिलना है, लेकिन मिलने से पहले वहां पहुंचेगा, हाथ लगाएगा, मेहनत करेगा, तब तो मिलेगा ना। तो बाबा कहती हैं पुरुषार्थ बिगड़ कभी कोई रह ना सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहां कहां से बच्चे आते हैं पुरुषार्थ करते हैं, कहां कहां से आए देखो ना। अभी आए हैं कहां से? हरियाणा से, पानीपत से आए। भट्टी वाले हाथ उठाओ, भट्टी वाले देखो कितना बड़ा ग्रुप है, ताली बजाओ इनके लिए। बाबा भी कह याद है बाबा को कहां कहां से आ गए हैं। बाबा के टाइम पर साकार में आते थे ना, हरियाणा से आते थे, पानीपत से आते थे, बाबा बहुत प्यार करते थे, वही सब के सब बाबा के प्यार में खोए रहते थे। तो वेलकम किया बाबा ने, बाबा कहते बाबा के घर में बच्चे आए, बच्चों को भी खुशी और बाप को भी खुशी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं अब सुनो आपका जवाब। बाबा हम भूल जाते, कहते हैं बाबा को बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा हंसते हैं, बाबा सामने खड़े और बाबा को कहते बाबा हम भूल जाते हैं, कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कहते हैं मुझे याद करो, किसको कहा? मुझे आत्मा को कहा ना, बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, शिव बाबा ही पतित पावन है, वे भी आत्मा सुनती हैं। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह है ऊंच से ऊंच, प्यारे से प्यारा बाप। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते थे, गाते भी हैं तुम्हारी गतमत न्यारी, तो जरूर मत दी थी अब तुम्हारी बुद्धि में है। इतने सब मनुष्य मात्र घर वापिस जाएंगे, विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है, सब आत्माएं फिर नंबर वन जाकर बैठेंगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबर वन बैठते ना, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो फिर वहाँ नंबर वार, जैसे उनको मार्क्स मिलते वैसे जाके बैठते। तो क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबर वार बैठते हैं ना, तुम भी नंबर वार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबर वार, जैसा जिसका पुरुषार्थ, जैसा जिसका पाठ, उसी अनुसार जाते हैं। नंबर वार जाकर बैठेगी, फिर नंबर वार आएगी पाठ बजाने के लिए। ये है रुद्रमाला। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं इतनी करोड़ आत्माओं की मेरी माला। अब सबसे बड़ी से बड़ी माला किसकी है? शिव बाबा की है। इतनी करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर पे फूल है, फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा है। कैसे ये ड्रामा चलता है सो तुम बच्चे जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे ना। ये मेहनत है, सबको रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। कौन सा? कि सबको रास्ता बताना, बाप की याद कराना, ये तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते, बाबा के ज्ञान देते हो, उनको बताते हो, कोई तुम देहधारी में नहीं फंसाते हो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं तो करना पड़ेगा ना, बाबा ने जो डायरेक्शन है तो करना चाहिए ना। फिर कई कहते बाबा हम कैसे करें, हम तो कर नहीं सकते, हमारे को ये बंधन। बाबा कहते बाबा ने जो डायरेक्शन दिया वो तो करना पड़ेगा ना, बाप डायरेक्शन देते हैं सो तो करना पड़ेगा, इसमें पूछने की क्या बात है। अब गवर्नमेंट का कोई रूल है, रूल मीन्स रूल, उसमें कहेंगे इसमें क्या करे, गवर्नमेंट का रूल है, उसको पूछना नहीं है, चेंज भी नहीं करना है, उसको फॉलो करना है। तो बाबा कहते इसमें पूछने की क्या बात है, कैसे भी करके याद जरूर करो। कुछ नहीं है, मामूली सा दायित्व है, केवल बाबा को याद करना है, कैसे भी करके बाप को याद करो। इसमें बाबा कृपा क्या करेंगे, खुद की कृपा करनी है, इसमें बाबा कृपा क्या करेंगे। याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है। कहीं होता है ना, खाना मेरे को, सब कुछ मुझे चाहिए, दूसरा बैठ के करे, खाना तो खुद को है ना। बाबा कहते वर्षा तुमको लेना, तो याद भी तुमको करना है। बाबा क्या करेंगे याद करके, तो वर्षा तुमको लेना है। तो बाबा कहते हैं याद भी तुमको करना है, वर्षा भी तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो ये झाड़ पुराना हो गया है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य, वह हठ योगियों का है हद का वैराग्य। वह तो बेहद का वैराग्य सिखला न सके, बेहद के वैराग्य वाले हद का वैराग्य कैसे सिखलाएंगे। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान से सुना, अब बाप कहते हैं सिक्की लदे बच्चे, तुम भी कहते हो, क्या कहते हो, अब बोलो, बाप भी कितना सिक्की लदा। बाबा कहते मेरी सिक्की लदे बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सिक्की लदा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बस हमारा तो क्या, एक शिव बाबा, बस हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है धारणा के लिए मुख्य सार, पहला स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव, हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। फैलाने की बजाय कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ बड़ी बात को छोटा बनाना। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिकॉर्ड देना। तो बाबा कितने रिकॉर्ड देते हैं ना, तो कैसे कैसे करना है बाबा ने युक्तियां बताई। ऐसे रिकॉर्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। स्लोगन त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार। त्याग का भाग्य बनाया लेकिन खत्म कैसे होता, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना संस्कार स्वभाव है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अव्यक्त इशारे, आत्मी स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के साथ सदा अंतर्मुखी रहे, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर। आज की 6 तारीख में हम सुनेंगे प्यारी मातेश्वरी जी की गुण, कितने महानता है, कितनी विशेषता। आज की तारीख है 11 तारीख। संपूर्ण विश्व के संपूर्ण निश्चय के गुण द्वारा सदा संपूर्ण निश्चय के गुण द्वारा सदा बेफिक्र स्थिति में रहने की शक्ति। बाबा के एक महावाक्य में फिर से बताते हैं, इसका आज 11 तारीख है। संपूर्ण निश्चय के गुण द्वारा सदा बेफिक्र स्थिति में रहने की शक्ति। बाबा के एक एक महावाक्य में मम्मा का अटूट और संपूर्ण निश्चय था। बाबा अगर दिन को रात भी कहे तो मम्मा उसमें प्रश्न नहीं पूछेगी, क्योंकि मम्मा को निश्चय था कि बाबा की हर बात में कुछ न कुछ रहस्य है, वह कल्याणकारी। उनकी किसी भी बात में अकल्याण नहीं हो सकता, इसलिए वह सदा बेफिक्र स्थिति में रही। कभी किसी भी बात की चिंता व फिक्रात की चिन्ह उनकी सूरत में दिखाई नहीं दिए। जब हम सबको स्वयं में, बाबा में, उनके पाठ में और कल्याणकारी ड्रामों में संपूर्ण निश्चय है, तो सदा निश्चिंत बेफिक्र स्थिति में रहना ही है। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, एक सूचना सुन के जाएंगे। कल से आप सभी एक समाचार सुन रहे हैं, शांति वन के मानसरोवर, पहले तो नदी किनारा कहते थे, वहां पर महाराष्ट्र के एक भाई हैं जिनका नाम है ज्ञानेश्वर भाई। उनको महाराष्ट्र वाले भी या अन्य मधुबन निवासी भाई बहने जानते हैं, कोई जानते हैं कोई नहीं भी जानते होंगे। तो ज्ञानेश्वर भाई नदी किनारे जो मानसरोवर, जब से नदी किनारे स्थान लिया था तब से लेकर के उन्होंने अपनी सेवाएं वहां दी, और मानसरोवर जब बना तब से लेकर के वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अथक सेवाधारी, खास करके सभी लोगों का ध्यान रखना, मानसरोवर में जो बठिया आदि होती हैं उसमें कभी कोई अनाउंसमेंट करना, और सभी का ध्यान रखते वो सेवाएं कर रहे थे। और वो बॉम्बे पता नहीं किस काम के लिए गए, तो बॉम्बे में उनको हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, और उनके भौतिक शरीर को आज ग्लोबल हॉस्पिटल में ला रहे हैं, और 3 बजे के बाद पांडव भवन के आंगन में लाएंगे, चारों धाम की यात्रा करा के उनको फिर शांतिवन ले जाएंगे, और शांतिवन के मुक्ति धाम में वहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो बाबा का समर्पित बच्चा था, इसलिए वहां के भाई बहने विशेष कह रहे थे कि चारों धाम की यात्रा कराई जाए। तो आज चारों धाम की यात्रा के लिए 3 बजे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पांडव भवन में लाया जाएगा। और सबको बता दें, जैसे कि नियम है कि जो भी पुष्प अर्पित करते हैं उनको पूरा ही स्नान पानी आदि करना होता है। अच्छा, तो खास हम सभी मिल करके ऐसी आत्मा को जो अनेकों की सेवा करता रहा है उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि योग में बैठ कर देंगे। ओम शांति। सभी बट्टी वाले बैठे रहेंगे, योग के बाद सल्ला दीदी आपसे मिलेंगे। ओम शांति।